ओम शांति। बाबा ने हम सभी को ये ओम शांति का महामंत्र दिया है और ये महामंत्र कई प्रकार के ब्राह्मण जीवन के अंदर चमत्कारिक अनुभव कराता है। यही जीवन का आधार है, जीवन का सार है। तो जैसे गीत में अभी सुना, जीवन का श्रृंगार है। परंतु दुनिया में भी अगर देखें तो जब भी किसी सफेद कपड़े वाले को और बैज लगा हुआ देखेंगे तो लोग भी अभी यही पहचानते हैं ये ओम शांति वाले है ना। धीरे धीरे ओम शांति इतना प्रख्यात होता जा रहा है कि लोग आइडेंटिफाई भी हमें करते हैं तो ये ओम शांति वाले हैं। लेकिन ये ओम शांति का स्वरूप हम में कितना है, लोगों ने हमें उस स्वरूप से देखना आरंभ कर दिया कि ओम शांति वाले कभी अशांति नहीं मचाते हैं, कभी झगड़ा नहीं करते हैं। लेकिन हम वो स्वरूप कितना बने हैं, कहां तक वो चीज हमारे स्वरूप में आई है, ये अपने आप में स्वयं को देखने का, स्वयं का निरीक्षण करने का समय आ गया है। क्योंकि प्रथम सीजन की मुरली में भी बाबा ने उसी पर जोर दिया कि बच्चे तुम्हें ओम शांति का प्रवाह सारे विश्व के अंदर फैलाना है। कई बार कई लोग कई तरीके से ओम शांति बोलते हैं। कई लोग जैसे हेलो हाय गुड मॉर्निंग राम राम की तरह ओम शांति का प्रयोग करते हैं, बिना उस स्वरूप में स्थित हुए बस ओम शांति बोल देते हैं। कई बार कई लोग अंदर में आए गुस्से को शांत करने के लिए ओम शांति है ना, और लास्ट में जब वो शांति माना गुस्सा शांत नहीं होता है, सामने वाला अगर इरिटेट करता ही जा रहा है कुछ समय तो हम सोचते हैं मैं ओम शांति, लास्ट में कह देंगे ओम शांति। कई लोग बड़े उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं तो भी ओम शांति है ना, कई तरीके से बोलते हैं ओम शांति। इसलिए कहा वास्तव में सही स्वरूप क्या है ओम शांति का। बाबा ने हम बच्चों को साकार मुरलियों में कई बार ये शब्द का भाव अर्थ में स्थित होने के लिए, आज भी बाबा की मुरली के अंदर ये बात आई कि बाबा कहे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, इस स्वरूप में अपने आप को स्थित करना है। तो ये शब्द एक जागृति है जो निरंतर मुझे अंदर से ये जागृत करती है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरा स्वधर्म मेरा गुणधर्म शांति है। और उसमें टिक करके हमें स्थित होकर के हमें ओम शांति का उच्चारण करना है। जिसका यादगार भक्ति में भी चला आया देखो ये ओम शांति कितना पॉपुलर हो जाएगा अंत तक, कि 2500 साल के बाद जब भक्ति मार्ग आरंभ होगा तो उसमें भी हर कथाकार कथा के समय 3 बार ओम शांति बोलेंगे, ओम शांति शांति शांति। और बाबा ने हमें 3 बार की शांति का मतलब बताया। वो लोग अलग मतलब बताते हैं कि भाई लोगों में शांति, प्रकृति में शांति, उस तरह से ओम शांति शांति का अर्थ बताते, लेकिन बाबा ने हमें ये 3 बार का भी अर्थ बताया कि मैं आत्मा, मेरा स्वधर्म शांत है, मेरा पिता शांति का सागर है, और मैं शांति धाम की निवासी हूँ, मेरा घर भी शांति है। इसलिए कई बार बाबा भी 3 बार ओम शांति करते हैं हम बच्चों को। तो ओम शांति कितना पॉपुलर हो गया भक्ति में भी। हमारी परम श्रद्धे आदरणीय दादी जी 3 बार, जानकी दादी जी हमेशा 3 बार ओम शांति बोलती है, और दादी जी ने उसका मतलब निकाला, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, यानी मेरा स्वधर्म क्या है, ये स्वयं में जागृति लानी है। मेरा पिता परमात्मा शांति का सागर है, मैं उसकी संतान हूँ, तो शांति के खजाने से मैं भरपूर हूँ, ये याद दिलाता है। और मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य बताती है कि अगर ओम शांति मेरे जीवन का लक्ष्य है तो मुझे शांति स्थापन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। कितनी सुंदर बात दादी प्रतिदिन हमें याद कराती है। कई फिलोसोफर्स ने इसका अर्थ निकाला ओम शांति का, कि ओम शब्द के अंदर 3 अक्षर है, अ उ और म, तो अ माना आचरण, उ माना उच्चारण और म माना मन के विचार। क्या मेरे आचरण में शांति है, क्या मेरे उच्चारण में शांति है, और क्या मेरे मन के विचार शांत है? तो ये 3 भाव से वो ओम शांति का मतलब निकालते। इसीलिए इंग्लिश में भी कहते AUM, A for actions, U for utterance, तो M for mind। अगर ये 3 हार्मनी में है तो जीवन में शांति है। अगर ये 3 एक दूसरे के साथ सुसंवादिता में, एकता में चल रहे हैं, मन के विचार, उच्चारण और आचरण, तो जीवन के अंदर शांति है ही है। तो जिसने भी अर्थ बताया बहुत सुंदर अर्थ बताए, लेकिन बाबा ने हमें जैसे जड़ या मूल स्वरूप में टिकने के लिए प्रेरित किया है। ये ओम शांति स्वरूप क्यों बनना है हमें, क्या फायदा होगा? बाबा ने जब इस साल प्रथम सीजन की मुरली के अंदर ये प्रवाह फैलाने के लिए जब कहा, तो ये संकेत करता है, कई अव्यक्त मुरलियों को याद दिला देता है कि यही अंतिम समय साक्षात्कार का आधार बनेगा। जितना शांति का प्रवाह हमारा होगा, ये शांति का प्रवाह बाबा का साक्षात्कार करेगा। बाबा की प्रत्यक्षता का आधार हमारे सूरत और सीरत द्वारा स्पष्ट करेगा। वहां तक कि बाबा ने कहा कि जब ये ओम शांति के प्रवाह में आप होंगे तो अनेक भटकती आत्माओं को ठिकाना प्राप्त होगा, अनेक अशांत परेशान आत्माओं को शांति में स्थित होने के लिए हिम्मत प्रदान करेगा, वहां तक कि डिप्रेशन वाली आत्माएं भी अगर आपके सामने आ जाए तो आपके शांति के प्रवाह से उनको भी अंदर में एक बल प्राप्त होगा। कैसी भी संस्कार वाली आत्मा हमारे सामने उधम मचाते हुए आ जाए अपने संस्कारों के कारण, लेकिन ओम शांति का प्रवाह जो होगा उनके संस्कारों को भी शीतल करने की ताकत रखता है। इतना आपका शांति का प्रवाह अंतिम समय में कार्य करेगा। वहां तक कि बाबा कहते हैं कि कई कर्म भोग भोगना में भोगने वाली आत्माएं जो होंगी जब आपके ओम शांति के प्रवाह में आ जाएंगे तो वो भी कर्म भोग से मुक्त होकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेगी। इतनी ताकत है इसमें। आज भी जब बार बार बाबा मुरली में ये कह रहे थे कि जीवन मुक्त देने वाली तुम आत्माएं हो, तुम बाप को याद करते हो तो दूसरों को जीवन मुक्ति प्राप्त होने लगेगी। हमारी याद की शक्ति से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कराएगी खुद को भी अनेकों को। तो आप सोचो कि ये ओम शांति का प्रवाह कितना मैजिकल कार्य करना आरंभ करेगा। और ये चमत्कारिक अनुभव करने के लिए मुझे उसका स्वरूप बनने की आवश्यकता है। भावार्थ ये कि बाकी और पुरुषार्थ छोड़े, लेकिन अगर इस एक पुरुषार्थ को भी हमने साध लिया, ओम शांति को ही साध लिया जीवन के अंदर, तो कितने चमत्कारिक अनुभव अनेकों को साक्षात्कार कराने के निमित्त आप बन जाएंगे। आपके चेहरे से चलन से अनेक आत्माओं को इसका अनुभव होगा, तो कितनी बड़ी बात है ये, है ना। इसलिए बाबा कई बार हमें कहते हैं बड़ी बड़ी बातों के पुरुषार्थ में अगर न भी जाओ, खाली एक बात को साधने का पुरुषार्थ करके देख लो, तो उसके आधार पर कई बातें, क्योंकि ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन को अगर हमने साध लिया तो उसके बाद बिल्डिंग बनाना, भविष्य बनाना कौन सी बड़ी बात हो जाती है। तो साइलेंस की शक्ति क्या होती है, पावर क्या होती है, उसको बाबा ने हमें कई बार मुरलियों के माध्यम से, चाहे साकार चाहे अव्यक्त मुरलियों के माध्यम से उसका इम्पोर्टेंस बताया है कि साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती है। वहां तक कि मनसा सेवा का आधार, दूसरों को योगदान देने का आधार, ये भी तो ओम शांति का स्वरूप है कि जब शांति में हम स्थित हो जाते हैं तो हमारा शांति का प्रवाह, वो वाइब्रेशन कितनी आत्माओं की सेवा करने के निमित्त बन जाएंगे। तो मनसा सेवा का आधार ओम शांति है, साइलेंस पावर है। लेकिन ये ओम शांति के प्रवाह में कौन टिक सकता है, उसके लिए मुख्य धारणाएं क्या है, कैसे हम ओम शांति स्वरूप बन जाए, तो उसकी सबसे प्रथम धारणा है अंतर्मुखी सदा सुखी। बाबा ने ये स्लोगन जो हमें दिया है, अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखता का स्वरूप जो बाबा कहते हैं। अंतर्मुखता शब्द से तीन बातें आ जाती है कि अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ। गुफा में जाना मतलब कि जो आत्मा के ये सीट है ब्रुकुटी की गुफा में अंदर चले जाओ और अंदर जाकर क्या करना है। तो गुफा में जब बैठते हैं लोग ऋषि मुनि साधु महात्माएं जब गुफा में बैठते तो एक संकल्प में अपने मन को स्थिर कर देते हैं जिसके लिए बाबा कहते एक के अंत में खो जाना। उस गुफा में बैठ जाएंगे तो एक के अंत में खो जाना समा जाना सहज हो जाएगा। इसीलिए अंतर्मुखता की गुफा में जब तपस्या में बैठते हैं योग में बैठते हैं तो योग में बैठते ही अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ यानी एकांत में एक के अंत में खो जाना ताकि एक रस स्थिति का अनुभव हम कर सके। दूसरा जब अंतर्मुखता कहते हैं तो अंतर्मुखता माना सागर के तले में चले जाना समुन्दर के तले में। जैसे कोई व्यक्ति सागर के तले में जाता है तो बाहरी दुनिया से कट ऑफ हो जाता है। तो जब हम भी अंतर्मुखता में सागर के तले में चले जाते यानी हमारा कांटेक्ट भी मन बुद्धि से बाहर की दुनिया बाहर के प्रभाव से मुक्त हो करके या फ्री हो करके हम बाबा के प्रभाव में चले जाते हैं समंदर के तले में सागर के तले में चले जाना कितनी सुंदर ये स्थिति होंगी ये अनुभूति होंगी कि जब उस तले के अंदर हम अपने आप को ले चलते हैं तो सागर के तले में चले जाना। इतनी बाहरी दुनिया के प्रभाव से अपने मन और बुद्धि को मुक्त कर देना। तीसरा जब अंतर्मुखता कहते हैं तो अंतर्मुखता माना बाबा हमेशा कहते रहे अंडरग्राउंड हो जाना। अंडरग्राउंड माना अंडरग्राउंड कोई भी साइंटिस्ट जब कोई रिसर्च करना होता है या जब किसी विशेष इन्वेंशन करनी होती है तब वो अंडरग्राउंड चला जाता है क्योंकि वहीं पर उसको एकाग्रता प्राप्त होती है। अगर अंडरग्राउंड नहीं हुआ तो एकाग्रता नहीं बाहर की कई बातों के आकर्षण आवाज के भी आकर्षण हमें आकर्षित करके अपने तरफ खींच लेंगे। इसलिए अंडरग्राउंड हो जाना क्योंकि अंडरग्राउंड होने से ही हम नई इन्वेंशन जैसे साइंस वाले अपनी इन्वेंशन करते हैं और उस प्रयोग में सफल हुए हैं तो बाबा कहते हैं जब अंडरग्राउंड होते हैं तो एकाग्रता के माध्यम से साइलेंस की शक्ति के प्रयोग के अभ्यासी बनना है हमें और उसके भी नवीन से नवीन अनुभव हम अपने जीवन के अंदर अनुभव कर सकते हैं और करा सकते हैं। इसीलिए अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखता का मतलब किनारा कर लेना नहीं है ये मिसअंडरस्टैंडिंग न हो जाए लेकिन अंतर्मुखता माना जब तपस्या में बैठो तो मन की स्थिति कैसी हो। जब हम बाहर व्यवहारिक दुनिया में आते हैं तभी भी वो प्रवाह हमारा उन तक पहुंचता रहे और उनको अनुभव कराए तो कट ऑफ नहीं होना है किनारा नहीं करना है रहना भी इसी दुनिया में है व्यवहारिकता में भी आना है लेकिन जब जब हम अंतर्मुखता की गुफा में या अंडरग्राउंड जाते हैं और उस समय जो हमने अपने अंदर एक प्रयोग किया है तो वो प्रयोग का प्रैक्टिकल स्वरूप हम दूसरों को भी देने के सक्षम हो जाते हैं देने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें अंतर्मुखी होना है, किनारा नहीं करना है, क्योंकि जितना बाह्य मुक्तता में रहेंगे तो शायद ये प्रयोग करना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसीलिए अंतर्मुखता में जाना जरूरी है, और उसके लिए बेस्ट टाइम जो है अमृत वेला, जब ऐसे गुफा में जाते हैं, ऐसे अभ्यास करते हैं और नवीन से नवीन अनुभव के प्रयोग हम करते हैं, अमृत वेले बाबा की भी हमें प्रकाश मिलती है, तो नए से नए अनुभव के माध्यम से हम अनेकों को फिर दिन भर में उसका अनुभव करा सकते हैं। इसलिए दूसरी बात, उसके लिए अंतर्मुखी कौन बन सकता है, क्योंकि बाह्य मुक्तता से अंतर्मुखता में जाना, उसके लिए भी कुछ धारणा है, और वो है बेहद की वैराग्य वृत्ति। जब तक हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं होगी, अगर बाह्य आकर्षण हमें अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं, हमारे मन को अनेक प्रकार के प्रलोभनों की ओर खींचते रहते हैं, दुनिया के नए नए साधन सुविधाओं के तरफ अगर हमारे मन को आकर्षित करते रहते हैं, तो वो अंतर्मुखता की गुफा में क्या जाएगा। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति बहुत आवश्यक है कि कोई भी चीज मुझे ये महसूस न कराए कि ये साधन मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे जीवन के लिए एक अहमियत रखता है, नहीं, उससे मेरी बुद्धि ऊपर है, उपराम। तो जितनी उपरामता बाह्य दुनिया से है, तो वही अंतर्मुखी सहज बन सकता है। तो इसीलिए कहा कि जितना हमारे अंदर देहत की वैराग्य वृत्ति उपरामता आती जाती है, उतना ही अंतर्मुखी बनना आसान हो जाएगा। तीसरी बात, तीसरी धारणा, ओम शांति का स्वरूप बनने के लिए अपने अंदर श्रेष्ठ और समर्थ संकल्पों का स्टॉक जमा करना बहुत जरूरी है। कल आपने जमा के खाते और लीकेज की बातें सुनी, लेकिन वास्तव में जितना श्रेष्ठ और समर्थ संकल्प होंगे, आप सब ने ये महसूस किया होगा, जितना व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है, लेकिन जितना आपके श्रेष्ठ संकल्प समर्थ संकल्प होंगे उतनी गति स्लो हो जाएगी, और जब गति स्लो हो जाएगी तो उसमें शक्तिशाली संकल्प, वो समर्थ संकल्प में शक्ति महसूस करेंगे। क्यों इसकी आवश्यकता है, समर्थ संकल्पों की आवश्यकता क्यों है, श्रेष्ठ संकल्पों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि एक तो अगर मुझे ओम शांति स्वरूप होकर के उस प्रवाह को चारों ओर फैलाना है, तो फैलाने का आधार संकल्प है, संकल्प ही मीडियम बनता है, और संकल्प जब मीडियम बनता है तो जितना दूर तक हम फैला सकते हैं, क्योंकि खाली ओम शांति स्वरूप हो जाएंगे अगर समर्थ संकल्प नहीं होंगे, शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्प नहीं होंगे, तो बहुत सहज निद्रा की अवस्था में जाना स्वाभाविक है। वो शांति के प्रवाह में क्या होता है, निद्रा योग होने लगता है, और बाद में पूछो कैसा रहा योग, क्या कहेंगे, बड़ी शांति थी, है ना। ये ओम शांति का प्रवाह नहीं था, ये निद्रा योग का प्रवाह था, तो उसमें शक्ति नहीं थी, तो वो दूसरों को अनुभव नहीं करा सकते। इसीलिए कई बार कई लोग जब कहते हैं कि योग करते समय हमको नींद आती है, नींद क्यों आती है, क्योंकि योग में जब हम बैठते हैं बहुत अच्छी स्थिति है और मन को शांत कर देते हैं, लेकिन शांत हो जाता है मन, अब शांत होने के बाद उसको समर्थ दिशा देना, साइलेंस की पावर से भरपूर करके उस प्रवाह को फैलाना, ये बहुत ऊंची स्टेज है। लेकिन जब उस उड़ान में जाना नहीं आता है, जैसे शांत तो कर दिया मन, लेकिन फिर उस उड़ान में जाना नहीं आता है, तो क्या होता है, वो और नीचे चला जाता है, क्योंकि नींद का आधार भी शांति है, तो वो फिर निंद्रा में चले जाते हैं, इसलिए नींद आती है। तो माना जो समर्थ संकल्प का टेक ऑफ करना होता है, वो उड़ान में जो जाना होता है उसमें नहीं आया तो क्या हो गया, नीचे चला गया, नीचे चला गया तो वो निद्रा स्थिति में चला जाता। इसीलिए योग के समय नींद आती है, क्योंकि दोनों का आधार साइलेंस है। तो वहां तक तो आ गया, मन को शांत करना आ गया, लेकिन शांत करने के बाद उसको समर्थ जो बनाने का है वो नहीं आया, तो इसीलिए निंद्रा में चले गए। इसीलिए वहां तक जाना ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब उड़ान की ओर जाओ, समर्थ संकल्प के माध्यम से उस समर्थ संकल्पों का प्रवाह जैसे सारे वातावरण के अंदर मुझे फैलाना है। तो समर्थ संकल्प का खजाना हमारे पास होना आवश्यक है, और समर्थ संकल्प कैसे होगा, तो मुरली का मनन चिंतन, उसका जितना अभ्यास होगा तो समर्थ संकल्प की ओर हम आगे बढ़ सकेंगे। अगर मुरली का मनन चिंतन करने का अभ्यास नहीं है, वो फिर नींद में जाना स्वाभाविक है। कि आज बाबा ने कौन सी बातें बताई, आज कितनी सुंदर बातें मुरली के अंदर आई कि जीवन अमूल्य है। उसी एक शब्द के ऊपर आप मनन चिंतन करना शुरू करो कि ये जीवन अमूल्य कैसे है, सोचो हमारे श्वास अमूल्य कैसे है। बाबा ने जो बातें बताई उसी को पकड़ करके आप शुरू करो, तो समर्थ संकल्प और उसकी खुशी बढ़ेगी। तो जब खुशी होगी तो नींद नहीं आएगी, लेकिन खुशी नहीं, क्योंकि मनन चिंतन करेंगे जब उस ज्ञान के खजाने से खेलना आरंभ करें तो खुशी पैदा होगी अंदर में। रत्नों से खेलेंगे तो खुशी तो होगी, लेकिन जब रत्नों से खेलना नहीं आता है तो क्या हुआ, शांत हो गया, तो फिर नींद में जाना स्वाभाविक है। इसीलिए नींद आती है, तो खेलो, मुरली के महावाक्यों से खेलना सीखना होगा। इसीलिए बाबा ने आज बताया ना, कोई भी एक पॉइंट, चाहे जैसे दादी गुलजार कहती है वरदान को ले लो, कि कंफ्यूज होने का कारण लूज कनेक्शन है, तो देखो मेरा कनेक्शन ठीक है नहीं है, उसी को देखो। माना कोई भी रीति से मुरली के मनन चिंतन में अपने मन को बिजी कर दो, तो समर्थ संकल्प जितना आपका समर्थ होगा, ज्ञान के मनन चिंतन में मन को बिजी करेंगे तो आपको नींद कभी नहीं आएगी, और वो संकल्प आपको ऐसे प्रवाह में ले जाएगा जो अंदर में खुशी का अनुभव कराएगा। निरंतर वो खुशी बनने लगेगी, अपने अंदर बढ़ने लगेगी, और योग बहुत अच्छा लगेगा, और आपके वो सूरत और सीरत के माध्यम से, वो प्रवाह के माध्यम से दूसरों को भी, आसपास भी बैठे हुए लोगों को भी उसका अनुभव कराएगा, है ना। तो इसलिए शांति, साइलेंस पावर और समर्थ संकल्प, और उसके लिए चाहिए अशरीरीपन का अभ्यास के बीच बीच में बाबा जैसे हमें ड्रिल कराते रहे। पिछले कई सालों से अव्यक्त बाप दादा जब भी आते थे तो अव्यक्त बाप दादा मुरली के बीच में ड्रिल कराते थे कि एक सेकंड में अशरीरी बन जाओ। तो जिस तरह बाबा हम बच्चों को कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं दिन भर में, तो उस ट्रैफिक कंट्रोल के समय भी अशरीरीपन के अभ्यास में चले जाओ। या जिसको बाबा ने कहा मन का मौन, कि कुछ देर के लिए मन का मौन, 3 मिनट ही तो गीत बजता है, तो 3 मिनट में भी मन के मौन में अपने मन को ले चले, एकदम साइलेंस के अभ्यासी हम बन जाए। तो ये धारणा जो है ये हमारे अंदर साइलेंस पावर को भी जमा करेगी और समर्थ संकल्प को भी जमा करेगी, ये पात्रता हमारी विकसित करेगी। इसलिए बाबा कहते हैं इसका अभ्यास करते चलो। और साथ ही साथ ओम शांति का प्रवाह माना, मन को इतना लाइट रखो, पांचवी धारणा ये है उसको लाइट रखो। जितना हमारे अंदर लाइटनेस होगी, हल्कापन होगा, तो हल्का होने से लाइट के कार्ब में अपने आप को देखेंगे कि जैसे मैं लाइट के कार्ब में हूं। जिसको दूसरे शब्द में आज की दुनिया के लोग कहते हैं लाइट के ओरा में, एक प्रभा मंडल लाइट का अपने आसपास देखो। उस लाइट के प्रभा मंडल में, ओरा में जब अपने आप को देखेंगे तो बाहर के जो वाइब्रेशन है, जो बाबा कल की मुरली में शायद कह रहे थे छीछी वाइब्रेशंस जो है, उस छीछी वाइब्रेशंस से अपने आप को सेफ रख सकेंगे, क्योंकि वो वाइब्रेशन ये लाइट के ओरा में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसलिए ये महसूस करें हम कि योग में जैसे बाबा की सकाश मुझ पर आ रही है और मेरे चारों ओर एक लाइट का प्रभा मंडल तैयार हो रहा है, और वो लाइट के प्रभा मंडल में मैं अपने आप में हूँ, और उस समय इतने समर्थ और शक्तिशाली संकल्प जब हमारे अंदर होंगे तो वो समर्थ और शक्तिशाली संकल्प मेरे चारों ओर ऐसा प्रवाह क्रिएट कर देगा जिस प्रवाह में जो भी आ जाए वो सहजता से पूछेगा कैसा, क्या अभ्यास कर रहे हैं आप जो आपके चेहरे पर इतनी शांति है, आपके जीवन के अंदर ये हलचल, बाहर की दुनिया की हलचल आपको प्रभावित नहीं कर रही है, और वो एक एंजेलिक मुस्कान जिसको कहा जाए, वो एंजेलिक मुस्कान आपके चेहरे पर नजर आने लगती है और सचमुच ये फील कराएगा लाइट के कार्ब में जब आप है, उस लाइट के प्रभा मंडल में जब है, कि मैं एक एंजल हूँ, मैं एक फरिश्ता हूँ, और फरिश्ता बन करके दूसरों तक भी ये लाइट का प्रवाह, ये शांति का प्रवाह मुझे फैलाना है। मुझे क्या करना है, दादी जानकी जो कहती है मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना है कि शांति का प्रवाह उस लाइट के प्रभा मंडल के माध्यम से दूर दूर तक बैठी हुई आत्माओं को भी साक्षात्कार कराएगा कि ये कोई फरिश्ता आया है, कोई सोया होगा उसको स्वप्न में एक फरिश्ता नजर आएगा, लाइट का फरिश्ता जैसे आकर के मुझे ब्लेसिंग दे करके चला गया, ये महसूस होगा। तो समर्थ संकल्प अगर हमारे अंदर ये स्टॉक जितना जमा होगा समर्थ संकल्प का, तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर की शांति वो शुभ भावना बन करके, दुआएं बन करके, जैसे ब्लेसिंग्स बन करके उन आत्माओं को भी ब्लेसिंग्स का अनुभव कराएगा कि जैसे ब्लेसिंग्स प्राप्त हो गए हैं मुझे। कितनी सुंदर ये फीलिंग होंगी। इसका नाम है ओम शांति स्वरूप होना। इसलिए ओम शांति खाली मुख से बोलने वाली बात नहीं है कि ओम शांति हम एक दूसरे को मिलते ओम शांति, वो तो राम राम जैसा ही हो गया। ये राम राम वाली बात नहीं है कि जैसे दुनिया में लोग एक दूसरे को देखते राम राम कर देते हैं, ये राम राम वाली बात नहीं है। लेकिन ओम शांति स्वरूप हो जाना कितना सुंदर भाव है उसका, और उस सुंदर भाव में अपने आप को स्थित करके देखो तो ऐसा एनर्जेटिक महसूस करेंगे कि वो प्रवाह चारों ओर फैलेगा। मेरा मन तो ये हो रहा है कि मैं कुछ देर आप लोगों को उस ड्रिल में ले चलूं, लेकिन एक तरफ कई बार जब चारों ओर नजर घुमा रही हूं तो याद आता है कि रात को 2 बजे से आप लोग उठे हैं, और अगर मैं ड्रिल कराऊंगी तो पता नहीं कहां चले जाएंगे, ये कहां चले जाएंगे फिर, हाँ निद्रा में जाएंगे या ओम शांति प्रवाह में जाएंगे, क्या करेंगे सचमुच? तो चले थोड़ी देर ओम शांति के प्रवाह में, हाँ? तो विजयी है ना कि रात्रि की निद्रा आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, कि निद्रा की अवस्था में तो नहीं ले जाएंगी ना, क्योंकि 2 बजे से जागे हैं, 9-10 बजे तक तो क्लास ही चल रहा था, उसके बाद गए होंगे कुछ बातचीत किया होगा कमरे में और फिर सोए होंगे 11 बजे के आसपास, और 2 बजे एकदम वो उमंग उत्साह के कारण उठ गए और आकर के बैठ गए और 2 बजे से 5 बजे तक योग किया। तो अभी कई बार मैं देखती हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, दूर दूर तक दिखाई देता है, तो इसीलिए जब मैं देखती हूँ कि कोई कोई ऐसे बीच बीच में हाँ झूल रहे हैं, तो मन तो होता है कि मैं जो है ड्रिल कराऊं, भावना मेरी यही है ड्रिल कराऊं, लेकिन हाँ संकल्प अंदर में आता है कि पता नहीं मेरे साथ चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, चलेंगे बहुत अच्छी बात है ना। तो थोड़ी देर के लिए हम सभी उस ओम शांति के प्रवाह में चलेंगे और बहुत सुंदर साइलेंस के वातावरण को, उस लाइट के कार्ब द्वारा समर्थ संकल्प को चारों ओर फैलाएंगे। ओम शांति। अपने शुद्ध श्रेष्ठ स्वरूप में स्वयं को देखे और स्थित करे। मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति मेरा गुणधर्म है। मैं आत्मा स्वीट साइलेंस की स्वरूप में हूं। ये शांति में प्रसन्नता समाई हुई है। मुझ आत्मा को अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है। कि मैं कौन हूं, ये जागृति अंदर से मुझे चार्ज कर रही है। मैं कौन, मेरा कौन, मैं बाबा की, बाबा मेरा, मेरा बाबा शांति का सागर है। मन और बुद्धि को बाबा के सानिध्य में ले जाती हूँ। और शिव बाबा से पावरफुल लाइट की सकाश स्वयं में अनुभव कर रही हूँ। जैसे लाइट के फुहारे में स्वयं को देख रही हूँ। मेरा मन एकदम हल्का लाइट होता जा रहा है। कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं, मैं लाइट ही लाइट स्वरूप हूँ। बाबा के लाइट की किरणें मुझे ऐसी ऊर्जावान बना रही है जो चारों ओर वो ऊर्जा एक लाइट का प्रभा मंडल बनकर फैलता जा रहा। ये लाइट का प्रभा मंडल दूर दूर तक आत्माओं को राहत का अनुभव करा रहा है। ये प्रवाह मुझ आत्मा से दूर दूर तक फैलता जा रहा है। अनेकों को बाप का साक्षात कार करा रहा है। ये प्रवाह चुंबक का कार्य कर रहा है अनेक भटकती आत्माओं को बाबा के घर तक ले जा रहा है। ये प्रवाह परेशान आत्माओं को हिम्मत प्रदान कर रहा है। अशांत आत्माओं को शांति की अंजलि दे रहा है। अनेक कर्म भोग को चुक्तु करने वाली आत्माओं को भोगनाओं को शांत कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कराना है। कितने समर्थ शक्तिशाली स्थिति में मैं हूं, ये समर्थ शक्तिशाली स्थिति परमात्मा को भी आकर्षित कर अपने वतन से साकार वतन में ले आ सकते। मैं शांत हूं, शुद्ध हूं, समर्थ आत्मा हूं। कितना समर्थ प्रवाह मैं स्वयं को महसूस कर रही हूं। मन हल्का, तन हल्का, मैं आत्मा हल्केपन में हूं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। एक हाथ की ताली शांति का प्रवाह बना रहे अपने अंदर भी, वातावरण में भी, प्रकृति में भी, ये प्रवाह को फैलाते रहना है। ओम शांति।